Hi, Mr. Harish Agarwal, Chief Financial Officer and SGA, our Investor Relations Advisors. Before we proceed ahead, I hope all of you and your loved ones are in the best of health. We have uploaded our results and investor presentation for the quarter on the stock exchanges and company's website. Hope each one of you had a chance to go through the same. The first quarter of FY22 began with a lot of challenges marked by the second wave of COVID-19. The company witnessed demand disruption due to lockdown-like restrictions of varying degrees across different regions of the country. Unlike last year, where we faced a complete lockdown, this time there was a localized and micro lockdown. Production was impacted on account of partial operations. However, with the easing of restrictions, operations are slowly returning back to the normal level. With drop in COVID cases and a faster large-scale rollout of vaccinations drive across the country, we have witnessed a gradual pickup in demand from early June 2021. Capacity utilization at both our plants have been increasing gradually on month-on-month basis. Despite of these external factors, we have reported revenue of rupees 145 crore for Q1 FY22. Our company is always committed to stand up with the employees during this tough time of COVID-19 pandemic. We at Kamdhenu believe safety and well-being of employees is of utmost importance. Taking that point into account, our company created awareness about the importance of vaccination and motivated employees to take it. Our company did a tie-up with hospitals for vaccination of 1,000-plus employees, including contract employees. The company has undertaken thermal screening of employees at our both plants, registered office, and regional offices on daily basis to ensure safety of the employees. There is compulsory use of masks and regular sanitization is undertaken at workplaces, following all protocols and guidelines. Now, firstly, I would like to touch upon the business highlights and performance of the paint business. We have been in the decorative paint business segment for more than a decade, and since then have been touching new heights and setting up industry benchmark. Within short amount of time, we have established a well-known brand in decorative paint in the Indian market. We have a dealer network of 4,000 plus dealers throughout India catering to the needs of millions of people. We have given utmost importance on R&D. We have a modern R&D laboratory equipped with world most advanced and reliable weathering testing machine, QUV machine, which enables us to manufacture and offer a wide range of environmental friendly products. Our company is focused on increasing the share of water-based paint products, launching new variants in the market. With our strong distribution network, 40 plus SKUs across 10 plus 1 products categories, 33 sales depot present in the tier 1, 2 and 3 cities, we are well placed to expand our market presence and increase market share. Our paint business was impacted during Q1 FY22 by second wave of COVID-19. However, with unlocking of the economy, we have started seeing some traction in demand from June 21 onwards. Despite of these headwinds, we have reported a revenue of 33.1 crore for Q1 FY22. Our endeavor is to consistently innovate and offer high-quality products. We also give utmost importance on advertising and promotions. With that belief, we have signed Preeti Jinta as a brand ambassador for decorative paint business under brand name Kamdhenu Paints. With her wide appeal across the common masses, we expect larger consumption and demand for our products. We have witnessed certain delay in the restoration of the remaining building, plant and machinery due to the second wave of COVID-19. It is almost nearing completion and expected to start soon. paint companies have witnessed pressure due to input cost inflation. However, raw material prices are expected to soften in the coming quarters. Though paint industry has faced challenges in short to medium term, however, we believe factors like reducing repainting cycle and lower per capita consumption will drive growth for the decorative paint going ahead. Now I would like to update on a scheme of arrangement. The draft scheme of arrangement, including the demerger of paint business in a separate company, has been filed with the Honorable National Company Law Tribunal, Chandigarh bench, for its approval on 15th March 21, whereas NSC and BSC has already issued its observation letter on the scheme of arrangement on 28th September 2020. NCLT has approved the first motion application of the scheme of arrangement, including the demerger of paint business of the company into a separate listed entity on 4th August 21. NCLT has also directed the company for convening the meetings of equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors on 25th September 21 of Kamdhenu Limited through video conferencing in accordance with applicable guidelines or circulars of Ministry of Corporate Affairs. The demerger of the paint business is expected to be completed by the end of FY22. It will impart better management focus, facilitate administrative convenience, and ensure optimum utilization of various resources. The proposed demerger will provide for greater accountability and scope for independent expansion of both steel and paint businesses. Now moving on to the key updates on steel business. The operations at the franchisee units and own manufacturing plant were also interrupted by the resurgence of the second wave of COVID-19 induced lockdown-like restrictions. However, with easing of restrictions, we started seeing operations resuming back to the previous level. We have realigned our manufacturing capacity of our steel plant from 1,56,000 to 1,20,000 metric ton. This move was taken in order to support the future innovation, development of new products, and for training of franchisee staff. We are continuously focused on our own manufacturing and franchisee business. On the back of our strong brand resilient business model and well-entrenched distribution network across the country, we have been able to clock franchisee sales of 5.6 lakh metric tons volume for Q1 FY22. Steel demand in India is expected to pick up in coming few months as consumption remains strong despite hit by the second wave of COVID-19. Starting June 21, with unlocking of activities, we have started seeing economic activities back to normal level. With affording housing project, government push forward infrastructure spend and speeding up of real estate projects, it shall drive the demand for steel products. The per capita consumption of steel is only 19 kg in rural parts against India average of 74 kg. Therefore, further scope of consumption of steel which shall drive demand for our products. With our wide portfolio of products from TMT bar, structural steel, color-coated profile sheets, we are well established to cater to any demand going ahead. With huge availability of vaccines and a strong improvement in the pace of vaccination, we are witnessing the growth momentum returning back to the previous level. Monsoon continues to remain favorable from agrarian economy perspective. Longer Diwali period should enable better sales and quarters ahead. The business environment is still uncertain due to predicted third wave of pandemic. However, we are well equipped to overcome the near-term challenges. With our strong brand, marketing and distribution network, and wide range of products in decorative paints, we are well placed to capture any opportunities in future. We are continuously looking to penetrate in markets where our presence is less and strengthen our footprints in existing geographies. Going ahead, we expect on expanding our business with more franchisee and dealers. Now, I would like to hand over the line to Mr. Harish Agarwal, CFO, to update on the financial performance of the company. Thank you.
Thank you, sir. I will take you all through the financials for Q1 FY22. First, about the paint business. Total sales from paint for Q1 FY22 stood at rupees 33.1 crore as compared to 32.8 crore in Q1 FY21. We are expecting things to normalize with the pent-up demand and festive season coming ahead. Paint segment contributed 23% of revenue in Q1 FY22. Total volume stood at 5,092 KL for Q1 FY22 as compared to 5,744 KL in Q1 FY21. This was on account of selling of higher value items. Our ASP per liter was rupees 64.2 for Q1 FY22 as compared to 56.2 in Q1 FY21. Coming to the steel business, our steel volume through franchisee route stood at 5.6 lakh metric ton in Q1 FY22 as compared to 4.1 lakh metric ton in Q1 FY21. Total brand turnover for Q1 FY22 stood at rupees 3,485 crore as compared to 1,973 crore in Q1 FY21. Royalty income through franchisee stood at 21.5 crore for Q1 FY22 as compared to 14.7 crore in Q1 FY21. Revenue from own manufacturing stood at rupees 88 crore in Q1 FY22 as compared to 35.8 crore in Q1 FY21. Profit before tax for the steel business stood at rupees 13.3 crore for Q1 FY22 as compared to 7.8 crore in Q1 FY21. For the overall business, revenue for Q1 FY22 stood at rupees 145.9 crore in Q1 FY22 as compared to 83.3 crore in Q1 FY21. Q1 FY21 performance was impacted by lockdown induced due to first wave of COVID-19. However, Q1 FY22 performance was also impacted on account of restrictions imposed and disruption in operation caused due to second wave. Our EBITDA stood at rupees 11.6 crore in Q1 FY22 as compared to 6.9 crore in Q1 FY21. Profit after tax stood at rupees 5.6 crore for Q1 FY22 as against rupees 1.4 crore in Q1 FY21. With this, I would like to open the floor for question and answer.
Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Thank you. The first question is from the line of Hardik Jain from Whitestone Financial Advisors. Please go ahead.
Yeah. Good evening. Thanks for the opportunity. Sir, in the scheme of arrangement, our paint business will be de-merged into Kamdhenu Colour and Coatings Limited, which will be a subsidiary of Kamdhenu Ventures Limited, and CVL will be listed. If I may know the reason behind this structure, why did not we think of, you know, directly listing the Kamdhenu Colour and Coatings Limited?
Good evening. This is Harish Agarwal.
Yes.
In fact, we have made a various permutation and combination for the demerger of paint business. Finally, we have been advised by the EY that this route would be better to infuse the funds in the unlisted company by the private equity or the strategic investor.
Right.
In fact, investor, any investor, would like to come in the company which is unlisted.
Right.
That is why we have choose this route.
So basically, we are open to any strategic investor into the company and maybe to, you know, avoid the buyback, open offer and all. We have chosen this structure, right?
Yes, yes.
Okay, okay. Thank you, sir.
Thank you. The next question is from the line of Arjun Shah from Ace Advisors. Please go ahead.
Hello.
Yes, please.
Yes, sir. Hi. I have two, three questions. First is, sir, in our paints business, what is the proportion of business from own manufacturing and from outsourced business?
In fact, our most of the sales come from the outsourcing. But as our plant is going to be restored, so we are increasing our production. In the next month, we will be able to cater most of the product from our own plant.
Okay. And sir, what is the margin differential between these two?
In fact, margin depends on the product, not with the outsourcing or in the own manufacturing. But definitely in the outsourcing, margins are less. If we produce the same product in our own plant or in outsourcing, the margin in the outsource product is less.
Okay. And sir, when we can expect our paint business to turn PAT positive? Any idea on that?
Within this financial year itself.
In FY22?
Yes.
Okay. And so are we looking at any further capex in own manufacturing?
In fact, we have recently restored the entire plant and machinery and building, and from our own plant, we can achieve a sales target of around 450 lakhs. After that, we will definitely have a plan for the second plant. But after 2 years.
Okay. And sir, my another question is, any particular product segment where, you know, we have gained market share in the paint segment especially?
We are into the decorative segment. Again, in the decorative, we are focusing on the high-value premium emulsions, which are water-based product. And in our own plant, most of the manufacturing will be done for the premium emulsions.
Okay. So in premium emulsions, we have gained market share.
Yes.
Okay. And sir, the last question, you know, I have last question on the demand side. Can you throw some light on how's been the demand, shaped up post-opening of the markets in June 2021? And any guidance you can give for this year, FY22?
In fact, month to month, sales are increasing, production level are increasing. From the June onward, our sales volume, our production volume has increased, and it will continue to grow.
Any number you can give on month-on-month basis, what has been the growth?
हेलो जो आप गाइडेंस की बात कर रहे हैं अभी पेंट में जो लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी उस पे 50% ग्रोथ का टारगेट हम लोग चल रहे हैं और Q2 हम 84 करोड़ Q3 94 करोड़ एंड Q4 95 करोड़ का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं एंड होपफुली हम इसको इजीली अपना कंप्लीट कर पाएंगे तो दैट वे इस साल का जो हमारा टारगेट है वो 50% प्लस है जो लास्ट ईयर से था जैसे हरीश जी ने अभी आपको बताया है कि हमारा अपने ओन प्लांट में फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट जुलाई से चालू हो गई है तो उसमें जैसे जैसे हमारे अपने प्लांट में वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हम लोग कन्वर्ट बना रहे हैं तो आउटसोर्सिंग में सिर्फ लो प्राइज आइटम हम लोग बनाएंगे और एक क्वेश्चन आपने और पूछा था कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या जो हमारा आज ट्रम्प कार्ड हो मार्केट में तो अभी जो स्टेनर्स आते हैं जो स्टेनर्स पिडलाइट भी बनाती है ईशर बनाती है और कामधेनु भी बनाती है तो अब देखेंगे कि इसमें हमारी ऑलमोस्ट 30% की जो सेल्स है वो हमारे स्टेनर्स की है दैट गिव्स big boost to our sales. और इसको हम लोग continuously जो हमारे stainers हैं और इसके अलावा जो colorants हैं उस पर ज्यादा focus है, जो value added और margin वाले products हैं उस पर ज्यादा focus कर रहे हैं, demand भी उनकी ज्यादा आ रही है तो उस पर शायद ज्यादा काम कर रहे हैं, तो hopefully हम लोग ये 300 करोड़ का target इस साल हम लोग achieve कर पाएंगे.
Understood. Okay sir, thank you. That's it for my side.
Thanks.
Thank you. The next question is from the line of Piyush Chadha, an individual investor. Before that, we'd like to remind our participants to ask a question. You may please press star and one. Piyush Chadha, you may go ahead with your question, please.
Hi, thank you for the opportunity. मुझे यही पता करना था, जब आप paints की business बैठा रहे हैं, इसमें ये ना ये चार महारथी बैठे हुए हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर और दूसरे दो, व्हाट इज इट, हम क्या यू नो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है टू गेन दिस काइंड ऑफ मार्केट शेयर. टुडे वी आर स्मॉल एट अराउंड अबाउट 200 करोर टर्नओवर, बट एज वी कीप ग्रोइंग दे विल आल्सो फोकस ऑन किलिंग अस, सो व्हाट इज इट दैट वी आर प्लानिंग टू डू दैट विल अलाउ अस टू ग्रो इन दिस बिजनेस.
देखिए कामधेनु का एक अपना निश ब्रांड है और वेल नोन ब्रांड है और रिटेल में स्टील में वी आर द लार्जेस्ट सेलर ऑफ टीएमटी बार्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. जैसा रिजी ने बताया करीब 12,500 करोड़ का हमारा लास्ट ईयर ब्रांड टर्नओवर रहा है और उसी इंटेंशन से हम लोगों ने पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट है तो वो स्टील से शुरू होता है, पेंट पे आके फिनिश होता है. तो हमारी अपनी कामधेनु ब्रांड की अपनी एक क्लाइंटेज है, एक ट्रस्ट लेवल है जो पिछले 25 साल में हम लोगों ने बनाया था और पेंट की जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 18-20% एनुअल ग्रोथ आ रही है. तो जो 30,000 करोड़ की मार्केट है उसमें हर साल लगभग आप समझ लीजिएगा कि लगभग 5,500 करोड़ की मार्केट नई डेवलप हो रही है क्योंकि रीपेंटिंग भी हो रही है और नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं. तो कामधेनु ने ये सोच के किया था कि इसमें हमारा हालांकि जो बड़ी कंपनीज से कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है और हमारी अपनी एक ब्रांड की परसेप्शन है, ब्रांड का प्रेजेंट है पूरे कंट्री में. इस पेंट में भी हमारे पास इस समय 4,000 डीलर हैं और चूंकि हमारा प्लान नॉर्थ में है तो बहुत साउथ में हम लोग बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा पाए हैं चूंकि फ्रेट का डिसएडवांटेज हमको है तो हम नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, साउथ में भी मार्केटिंग हमने शुरू की है. तो जिस तरह से हमें हर साल 100-150-200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है अपनी ग्रोथ को करने के लिए वो इजीली अचीवेबल है और चूंकि 5,500 करोड़ की डिमांड है जो बड़ी कंपनीज ऑलमोस्ट लेकर जा रही हैं तो हमें उसमें कोई ऐसा नियर फ्यूचर में ऐसा दिक्कत नहीं आ रही है कि वो हमें सेल्स अचीव नहीं कर पाए. और अगले 4 से 5 साल में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम इसको 1,000 करोड़ के सेल्स पे लेके आए क्योंकि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, सिर्फ इसमें सर्विसेज इम्पोर्टेंट है प्लस प्रोडक्ट रेंज और क्वालिटी इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मेरे ख्याल में अभी मार्केट में एक्सेप्टेंस है. कामधेनु पेंट की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, रिपीटेड डिमांड आ रही है क्योंकि ये हम लोग चूंकि इतने पुराने नहीं है, पुरानी कंपनी सब 80-90-100 ईयर्स पुरानी कंपनी है तो वो ब्रांड से हमारे को कोई थ्रेट ऐसा नहीं है. उनका अपना मार्केट है, हमारा भी मार्केट है अपना, हमारी अपनी ब्रांड की परसेप्शन है और इजीली द गोल कैन बी अचीव्ड इजीली, नो देयर नो इशू.
ठीक है सर. एंड आप क्या अपने डीलर को मार्जिन थोड़ी ज्यादा देते हैं या प्राइस थोड़ा कम रखते हैं कॉम्पिटिशन से, जैसे हमने देखा है कि आपका सरिया is much higher price than unorganized sector but at a slight discount to some of the bigger organized players. Paints mein bhi aap yahi strategy follow kar rahe hain kya?
Ji, dekhiye paint mein, steel mein, retail mein hum brand leader hain to yahan pe Asian brand leader hain. To jo realization Asian ko milta hai being the same quality standards, same price, same DPL or same MRP. तो एशियन जो डिस्काउंट डीलर्स को ऑफर करता है, बर्जर, नेरोलैक और बाकी कंपनी 2-3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करती हैं और हम एशियन से करीब 5-6% डिस्काउंट ऑफर करते हैं एक्स्ट्रा. तो दैट वे 3% डिस्काउंट एक्स्ट्रा बर्जर नेरोलैक देते हैं, उनसे 3% और लोअर रिलेशन हमको होती है लेकिन हम डिस्काउंट की शेप में देते हैं. वो हम सेल्स टर्नओवर डिस्काउंट या इंसेंटिव या पेंटर्स के लिए हम बहुत सारी स्कीम हमने ड्राइव की हुई है जिससे कि पेंटर्स का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो. पेंटर्स को हम लोग बहुत सारी स्कीम उनकी वेलफेयर की हैं, उनके लिए वो वेलफेयर स्कीम हम लोग चला रहे हैं और डायरेक्ट बेनिफिट उनको ट्रांसफर कैश कार्ड के थ्रू जो है उनके क्रेडिट कार्ड में डालना है, उनके बैंक में डालना है, तो वो चीज पिकअप हो रही है। आज हमारे पास लगभग 25,000 पेंटर एनरोल्ड हैं और ऑलमोस्ट 10 से 15,000 पेंटर कंटिन्यूसली हमारे से मटेरियल जो है प्रिक्योर करा रहे हैं।
ओके, तो दोनों थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर साइड पेंटर साइड आल्सो बाय गिविंग बेटर मार्जिन डीलर्स और रिटेलर्स को मोटिवेट करते हैं
जी। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें शेयर करना चाहूंगा, जो हमने चूंकि जो मेट्रोज है वहां पे ब्रांड का कंसेप्ट ज्यादा होता है और रिटेलर को टाइम नहीं होता कस्टमर को समझाने का, तो हमारा फोकस टायर 1 टायर 2 टायर 3 में है, सिटी में है, जहां पे कि डीलर को टाइम भी होता है समझाने का, उसको इंसेंटिव भी ज्यादा हमारे प्रोडक्ट में मिलता है और उसकी अपनी सेल भी होती है अपने एरिया में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अगर वो किसी को अश्योर करता है कि भाई पेंट काम धेनु आप लगाइए, कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको फ्री आपको दोबारा रिपेंट करा के दूंगा, पेंट में दिक्कत कोई नहीं आती है 4-5 साल तक, लेकिन एक उसका सेटिस्फेक्शन होता है डीलर के ऊपर का, अगर डीलर उसको अश्योर करता है कि मेरी जिम्मेदारी पे आप पेंट कराइए और आपको कोई दिक्कत होगी मैं फ्री रिप्लेसमेंट करा के दूंगा, तो इस तरह से क्या होता है तो थोड़ा कस्टमर का फर्स्ट टाइम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है, बाद में तो उसके नियर डियर अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे लोग उसको देख कर जो है फिर उसको रिपेंट कराते हैं आपस में।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, दिस इज वेरी हेल्पफुल,
थैंक यू।
थैंक यू। रिमाइंडर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, यू मे प्लीज प्रेस स्टार एंड वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रियंका सिंह फ्रॉम अतिदान सिक्योरिटीज, प्लीज गो अहेड।
Yeah, good afternoon, sir. I had a couple of questions. The first one is, what is your current capacity utilization at both your plants, and what was the utilization in the quarter gone by?
You are talking about our own manufacturing?
Yes.
Paint and steel.
Yes.
In fact, due to COVID disruption, capacity is increasing on month-to-month basis. In the steel business, we have capacity utilization of around 75% from July onwards. And in the paint business, in fact, our plant is going to be completed within this month, and we can be able to calculate that capacity utilization from the next month onward in the true sense.
Okay, okay. Got it. And what was this steel utilization in Q4?
Q4 of
FY21
Q4. Just hold on, please. It was around 85% for the steel.
Got it. And can you throw some light on your CapEx plans in both your businesses?
In fact, we are increasing capacity of our steel through the franchisee route.
Mm-hmm.
And we don't have any plan for the capex.
Okay.
The manufacturing.
Got it. And what is the tax rate of the company? So the tax amount has increased on a sequential basis and even on a year-on-year basis. So what is the reason for this increase?
No. It is a fixed rate, effective rate is 25.17%. I think you are calculating directly PBT with the current tax, but it is not the way of calculating the tax. There are certain adjustment which need to be made with the PBT, so thereafter tax has to be calculated on the taxable amount.
Okay.
The rate is 25.17%, it is fixed for last 2 years.
Got it. And also, can you, highlight on the debt level at the end of this quarter in both your businesses?
In fact, we have only working capital loan. We don't have any term loan.
Yes, yes. Working capital.
So working capital would be around 100 crore.
Including both the businesses?
Yes. Yes.
Okay, got it, got it. Okay, that's it from my side. Thank you.
Thank you. Reminder to all the participants to ask a question. You may please press star and one. The next question is from the line of Atul Kothari from Frogwell Securities. Please go ahead.
Sir, thank you very much for the opportunity. Sir, I have some questions related to our steel business. Sir, if you can throw some light as to how was the demand scenario for TMT bars in Q1 FY22, especially considering the second wave of COVID-19.
You can repeat karenge question, please.
Yes, sir, how was the demand scenario for our TMT bars in Q1 FY22, considering that we were affected by the second wave of COVID-19?
देखिए इस बार जो सेकंड वेव थी थोड़ा सा बहुत डीप रूटेड थी और थोड़ा बहुत एग्रेसिव वेव था ये, और उस समय नो डाउट के फैक्ट्रीज चल रही थी, फैक्ट्रीज में पार्शियल प्रोडक्शन था इस बार, लेकिन जो रिटेल काउंटर्स थे वो ऑलमोस्ट सारे बंद थे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा था, हाँ, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिएगा कि हमने Q1 में जो लास्ट ईयर हमने 4 लाख टन के करीब हमने टीएमटी बार बेचा था, इस बार 5,63,000 हमने टन टीएमटी बार बेचा है, तो सिर्फ वही प्रोडक्ट जा पाया कि जो डायरेक्टली प्लांट से और प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा पाया, थोड़ा सा जो शॉर्टफॉल रहा है वो चूंकि मार्केट में बहुत सारे डीलर्स की शॉप्स बंद थी कुछ एरियाज में, काफी बड़े एरिया में डिमांड बंद, शॉप्स बंद थी, उसकी वजह से ये थोड़ा सा है, और ये कंटिन्यूसली अब ग्रो कर गया है, ऑलमोस्ट हम लोग अपनी नॉर्मल लेवल पे आके काम करना शुरू कर दिया है अगस्त के महीने में.
ओके सर, सो वेटिंग ऑन दैट. एंड सर, व्हाट वाज द एवरेज टीएमटी प्राइस ऑफ Q1 FY22?
प्राइस की बात कर रहे हैं आप?
Yes, sir. What has been the average TMT price for Q1 FY22 compared to Q1 of last year, as well as for Q4, as well as sequential? So, sir, Q4 FY21 mein kya tha price? Aur abhi Q1 FY22 mein price kya hai?
Main bata raha sir. Aapko jo hai, ye raha देखिए, लास्ट ईयर Q1 में हमारा जो प्राइस था तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज टन था.
ओके.
और इस बार Q1 में जो नेट रियलाइजेशन प्राइस हमारी आई है वो 52,000 रुपीज टन आई है, ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज टन की कॉस्ट आई है. और Q4 21 में ये जो प्राइस थी ये 46,000 के आसपास था, तो दैट वे Q1 में लास्ट ईयर 39, फिर Q4 में 46 और Q1 22 में 52,000 की प्राइस आई है. अभी प्राइसेस थोड़ा सा कम हुई है, करीब 2-3,000 रुपए टन.
ओके, तो सर आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा, प्राइसेस में गिरावट आएगी कि ये स्थिरता बनी रही?
देखिए, जो हमारा कामधेनु का मॉडल है इसमें मोस्टली हमारे मैन्युफैक्चरर जो हैं वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट परचेज करते हैं बिलेट, और बिलेट को एक कन्वर्जन कॉस्ट हमारी आती है और एक प्रीमियम के ऊपर हमारे सारे फ्रेंचाइजी वो प्रोडक्ट बेचते हैं. इसका जो मेजर इफेक्ट आता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो आयरन ओर और कोल अपना लेकर वो मटेरियल मंगाते हैं जब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको तो इफेक्ट ज्यादा आता है प्राइसिस का, प्लस साइड में भी निगेटिव साइड में भी. लेकिन जो सेकेंडरी रोलिंग व्हील्स हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उसमें इम्पैक्ट कम आता है. इसमें सिर्फ एक इम्पैक्ट आता है कि अगर स्टॉक बहुत ज्यादा है तो जब प्राइस हाई होती है तो उसका मार्जिन आता है, अगर बहुत ज्यादा स्टॉक है प्राइस नीचे जाती है तो स्टॉक में थोड़ा उनको लॉस आता है, लेकिन कन्वर्जन में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी एक सेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस एक मार्जिन है, तो उसमें बहुत ज्यादा हमारे को या हमारी फ्रेंचाइजी को लॉस या प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज रहती है.
ओके सर, तो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें हमारा मार्जिन मिल जाता है.
प्राइसेस स्टॉक में बढ़ती हैं घटती हैं, लेकिन हमारी कन्वर्जन कॉस्ट वो ऑलमोस्ट फिक्स है, और जो मार्जिन हमारा फिक्स है प्लस काम लेने का प्रीमियम फिक्स है ऑलमोस्ट, जो वेरी करता है लगभग 2-2.5 हजार रुपए टन का सब जगह अलग अलग तरीके से, और हमारी रॉयल्टी भी फिक्स है काम देने की, पैटर्न बेसिस पे है, वो प्राइस के ऊपर नहीं है।
ओके सर, सर काफी कमीज है जैसे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, इनको सर इको लेवल सर्टिफिकेशन मिला है अपने टीएमटी बार प्रोडक्ट्स के लिए, तो सर क्या हम भी कोशिश करेंगे इको लेवल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की?
देखिए हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है ये इको लेवल जो सर्टिफिकेशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है कि क्या प्रोसेस उनकी है और वो किस तरह से कितना एनर्जी सेविंग उसमें कर पाते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन हमने इसमें डिटेल्स में हम लोगों ने वर्कआउट किया था, तो ये हम लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है इसमें।
ओके सर, और सर काफी नई कंपनीज भी आ रही है टीएमटी स्टील बार में, जैसे कि श्याम स्टील है या जिंदल स्टील है, वो नया कैपेसिटी वो लोग ऐड कर रहे हैं, तो सर इससे कंपटीशन बढ़ने से क्या आपको लगता है कि हम पे कुछ डिमांड शॉर्टफॉल हमारे वहां हमें दिखाई देगा, ऐसा कुछ आपको लग रहा है?
नहीं देखिए, एक तो
डिमांड सप्लाई में सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड नहीं रहेगा, तो क्या हमें उससे कुछ तकलीफ होगी?
नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने इसमें जो जैसे हरीश जी ने पहले बताया था कि हम लोगों ने जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है 50 लाख टन के लिए अवेलेब कर रहे हैं, 42 लाख टन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगले एक साल में हम इसको 50 लाख टन ले आएंगे, और वो थ्रू फ्रेंचाइजी रूट है जिसमें हमारी कंपनी का अपना कोई कैपेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारे पास कोई उसका इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे डिमांड हमारी बढ़ रही है कंटिन्यूसली, स्टील के बहुत सारे प्रोजेक्ट जिस तरह से इंफ्रा में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, जितना पैसा खर्चा कर रही है, तो आज हमारे पास शॉर्टफॉल है, तो हम जितने भी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है उन सबके यहाँ एक्सपेंशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, और हमारा प्रिफरेंस उन्हीं को है कि जो ऑलरेडी प्लांट हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वहाँ एक्सपेंशन होता है तो उनकी थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, तो हमारे को उसमें कोई अभी लगता नहीं है कि कोई डिमांड का हमारे पे इफेक्ट आ रहा है। और सर एक और है कि कामधेनु का जो है वो आज की डेट में रिटेल में प्रीमियम ब्रांड है, लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है, और जैसे श्याम स्टील या और आपने ब्रांड ने शुरू किया है, तो देखिए अब वो जब ब्रांड की हम बात करते हैं तो हर आदमी को नंबर वन ब्रांड चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि कामधेनु के लिए एज सच कोई थ्रेट नहीं है, और चूंकि मार्केट में डिमांड कंटिन्यूसली आ रही है, ये जरूर है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट बिकेगा, थ्रेट सिर्फ उनके लिए है जो अनब्रांडेड बना रहे हैं विदाउट एनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो सफर करेंगे, उनका मटेरियल नहीं बिकेगा, और उसकी जगह जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो रिप्लेस कर देंगे उसको।
नेशनल ब्रांड
कामधेनु का नेशनल ब्रांड है, पूरे इंडिया में हमारी प्रेजेंस है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक, एवरीवेयर।
ओके सर,
और ये जैसे शाम है तो वो ईस्ट इंडिया में सिर्फ अवेलेबल है, कोई और दूसरा ब्रांड एक पर्टिकुलर स्टेट में अवेलेबल है, तो कामधेनु चूंकि नेशनल ब्रांड है और हमारे पास मोर देन 54 यूनिट आज वर्किंग में है टीएमटी की, तो हमारी एक स्पेशलिटी और यूएसपी है कि हम कंट्री के किसी भी पार्ट में जिसको स्टील चाहिए विद इन 24 आवर्स हम उसको अवेलेबल करा के देते हैं, तो दैट इज अ यूएसपी। तो मेरे उसमें मैं हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या डेवलपर्स हैं उनकी इन्वेंट्री हमने बहुत कम कराई है इससे, जो पहले एक एक महीने की इन्वेंट्री रखते थे साइट पे, वो मुश्किल से अब एक हफ्ते की इन्वेंट्री भी नहीं रखते हैं।
ओके ओके सर, ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू।
Thank you. Reminder to all the participants to ask a question. You may please press star and one. The next question is from the line of Ashay Jain from Jain Capital. Please go ahead.
Good evening, sir. Sir, I have a few questions. Firstly, if you can provide a breakup of branding and promotion expenditure for both paints as well as steel business for Q1 FY22, and at an overall basis, do you have any target as a percentage of sales?
ये हरीश जी आपको बताएंगे सर,
थोड़ा सर
branding expenses in Q1 FY22 is around 16 crore, and it was 10 crore in Q1 FY21. And your question is to make it separate for steel and business. It is very difficult to segregate the branding expenses for the steel as well as paint. But after demerger, we will definitely able to make separate expenditure on the paint company and the steel company. Today, it is very difficult to segregate it.
And sir, any overall target as a percentage of sales that we would spend only this much on promotion and branding?
Around 70 crore we have a target to spend in FY22, partially by Kandhenu and partially by the franchise units.
Okay. The second question is, JSW Paints has recently announced the new at the plan to set up a new plant of decorative paints of 1 lakh kiloliter capacity. So what is your view on this increasing competition in the paint segment?
देखिए पेंट में बहुत बड़ी मार्केट है और हमारा अपना एक स्कोप है और हमारी अपनी मार्केट है. रिटेल में हमारे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है किस तरह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फीड करना है. और अगर आप देखेंगे पेंट के बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो पेंट में कोई भी रिटेलर जो हमारा है उसको ए टू जेड पूरा प्रोडक्ट रेंज चाहिए. उसको शुरू में पुट्टी भी चाहिए, प्राइमर भी चाहिए, फिर उसके ऊपर उन्हें पेंट भी चाहिए. तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है या चार प्रोडक्ट बनाती है तो वो सक्सेसफुल नहीं है. इंडिया में आपने देखा होगा कि एक्जोनोबल का इधर शेरविन विलियम की कंपनी आई थी यूएस की और वो अनसक्सेसफुल होकर चले गए. बहुत सारे प्लांट ऐसे आए हैं जो दो या चार या पांच प्रोडक्ट बना रहे हैं. इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है जैसे, और उसमें क्वालिटी ए बी सी क्वालिटी आती है. एक डिस्टेम्पर है, तीन क्वालिटी है. एक एक्सटीरियर इमल्शन है, उसकी तीन क्वालिटी है. एक इंटीरियर इमल्शन है, उसकी तीन क्वालिटी है. हर साइज है, पैक साइज है, कलर है, टिंटिंग मशीन्स है. तो वो सर्विस देना 200 ml से लेके और 20 लीटर की बाल्टी तक स्टॉक में रखना, डीलर तक पहुंचाना, वो थोड़ा सा बहुत ट्रबलसम और ट्रिकी काम है. सर हर डिपो में हर प्रोडक्ट की इन्वेंटरी रखनी, प्लांट में आज अगर 40 प्रोडक्ट है तो 40 प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्लान प्लस की रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट, इसके अलावा उसकी पैकेजिंग चाहिए. तो वो थोड़ा सा टिपिकल वर्क है. और बहुत मास लेवल के ऊपर के एक या दो प्रोडक्ट बना तो सकते हैं लेकिन वो बाजार में उसके डीलर को एक्सेप्टेंस नहीं आती है. और डीलर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मेरे पास इमल्शंस हैं, पेंट और फिनिश प्रोडक्ट हैं, अगर वो शुरू में ही कहता है कि भाई मेरे पास इसका प्राइमर नहीं है, पुट्टी नहीं है, तो कस्टमर जैसे ही दूसरे ब्रांड में जाता है तो फिर वो वापसी नहीं आता घूम के. तो उसको ए टू जेड सारे प्रोडक्ट रेंज चाहिए. हमारे को वुड कोटिंग भी हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल भी बनाते हैं, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड भी बनाते हैं. तो दैट वे किसी भी कस्टमर को घर जब काम करता है तो उसे ए टू जेड सारे प्रोडक्ट हमारे डीलर को देने पड़ते हैं और कंपनी को सारे बना के देने पड़ते हैं. तो वो काम करना आई थिंक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एशियन और जो पुरानी कंपनी है जो 100 ईयर से कर रही है, उन्होंने बहुत सारे मटेरियल आउटसोर्सिंग करके और वो उनका पूरा सेटअप बना हुआ है. उसको तोड़ पाना आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है.
ओके सर, समझ गया.
और अब ये सारा काम हम चूंकि छोटा साइज है हमारा, हम इंडिविजुअली किसी डीलर से कॉन्टेक्ट पे मेरी टीम भी रहती है, मार्केटिंग की टीम भी रहती है, सर्विस भी दे पाते हैं. अभी अगर साइज बड़ा करना है तो इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट करना या उसको सेट करना थोड़ा मुश्किल काम है.
ओके सर, गॉट इट. सर लास्टली, रॉ मटेरियल प्राइसेस सर हैव इंक्रीज्ड इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स सिग्निफिकेंटली. एशियन पेंट्स हैज इंप्लीमेंटेड एन इंक्रीज ऑफ 3% prices in Q1 FY22. So what is the price increase which Kandhenu has taken, if any, so far?
देखिए प्राइस के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारी सारी पेंट कंपनीज की सेम प्राइस लिस्ट है. डीलर प्राइस लिस्ट भी, और जो डीवेप लाइट लिस्ट है और एमआरपी है वो सारी कंपनीज की सेम है। और अभी जैसे 3% का प्राइस इंक्रीज एवरेज आउट हुआ था 1 मई को, तो एशियन सबसे पहले करेगा तभी और कोई कंपनी कर पाती है। दूसरा प्राइस रिवीजन अभी आया है ऑलमोस्ट 2% का, जो आप समझ लीजिए 1.5% से लेके 5% तक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे है, तो वो एवरेज 2-2.5% का 4 जुलाई से एप्लीकेबल था, तो वो भी ऑलमोस्ट हर कंपनी ने किया है, कामधेनु ने भी किया है। और एक अभी इसी महीने में 3 अगस्त को एक प्राइस रिवीजन और हुआ है, जिसमें जो प्राइमर्स हैं, चूंकि वो भी इनेमिल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो सॉल्वेंट बेस्ड हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो उसमें करीब 5.25% का इंक्रीज हुआ है, सारी कंपनी ने किया है, कामधेनु ने भी किया है। और इनेमिल के ऊपर जो पेट्रोकेमिकल बेस है इस पे भी करीब 2.75% का इंक्रीज सारी कंपनी ने किया है, कामधेनु ने भी किया है। तो प्राइस इंक्रीज तो अगर मार्केट में एशियन करता है तो बाकी सब कंपनीज वे इमीडिएटली करती हैं, और सिर्फ उसको अगले नेक्स्ट वीक में या 10 दिन के अंदर अंदर कर लेती हैं, तो उसमें कहीं हम लोग पीछे नहीं है।
ओके सर, गॉट इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय, थैंक यू।
थैंक यू।
Thank you. Reminder to all the participants, to ask a question, you may please press star and 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Akash Mehta from Capex Investments. Please go ahead.
Hello, sir. I had some questions on the paint business. So, firstly, what is the reason for the low volumes in the paint business in FY22 Q1 as compared to Q1 FY21?
मैंने पीछे पहले भी एक क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा था कि हमने अभी जैसे हमारे अपने प्लांट में ऑपरेशंस चालू हो गई हैं और हम अपने प्लांट्स में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो मेरे इससे जो Q1 की सेल्स है इसमें ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूशन मेरा जो स्टेनर्स हैं, वो स्टेनर जो आपने ट्यूब में देखा होगा कि पेंटर जेब में लिए घूमता है और कोई भी कलर चाहिए तो वो उसकी ट्यूब से 1 या 2 ड्रॉप मिला के वो कलर मिला लेता है, तो वो स्टेनर्स मेनली एशियन और आपका पिडलाइट और एक नरोलक बनाता है। कामधेनु ने इसमें एक्सपर्टाइज है हमारे पास और हमारा मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है ये प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू कम है, वैल्यू ज्यादा है, रिप्राइस ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम कम है। ऑलमोस्ट 30% शेयर हमारा इसी का है और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो आप समझिएगा कि जो आउटसोर्स है, लो प्राइस आइटम है। इस पेंडेमिक के पीरियड में जो लो प्राइस आइटम है वो ज्यादा बिके हैं, जिसमें पुट्टी है, डिस्टेम्पर्स हैं या लो प्राइस इनेमिल्स हैं। जो प्रीमियम इमल्शंस हैं वो काम अभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब इसके बाद शुरू हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अगर आप हमने जो प्रेस रिलीज भी दी थी उसमें अगर देखेंगे कि जो एवरेज प्राइस है लास्ट ईयर हमारी जो थी वो 56.2 थी और इस बार जो है वो 64.2 रुपीज आई है, तो दैट वे 8 रुपए की जो मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ी है वो उस मेरे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल से बढ़ी है। उसमें वॉल्यूम कम हुआ है लेकिन सेल्स पहले से इम्प्रूव है। आने वाले टाइम में भी हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और तभी हम 300 करोड़ की सेल इस बार कर पाएंगे। 50% ग्रोथ का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं एंड होपफुली वी विल डू इट।
ओके ओके सर। एंड करंटली आवर कंपनी हैज अबाउट 1600 प्लस टिंटिंग मशीन इंस्टॉल्ड एट ऑल द डीलर आउटलेट्स। जस्ट वांटेड टू नो योर व्यू ऑन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ दीज मशीन एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन आवर बिजनेस।
देखिए अभी आप देखेंगे कि शेड कार्ड में देखेंगे तो मोर देन 2000 शेड्स होते हैं, तो वो कस्टमर कैन चूज एनीवन, तो वो प्रैक्टिकली प्लांट के अंदर वो सारे शेड बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो जो टिंटिंग मशीन का बहुत बड़ा रोल हो गया है पिछले 20 साल से, तो टिंटिंग मशीन कंटिन्यूसली डिमांड में है। जैसे जैसे नए डीलर एड हो रहे हैं टिंटिंग मशीन भी हमको देनी पड़ती है, क्योंकि टिंटिंग मशीन में 16 कलर होते हैं कलरेंट्स के। आप जो भी शेड कंप्यूटराइज मशीन होती है तो उसमें जो भी कलर आपको चाहिए एग्जैक्टली सेम कलर जितनी बार भी आप बनाएंगे सेम कलर बनेगा, तो वो आई थिंक एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एशियन की ऑलमोस्ट 60,000 मशीन्स पूरे इंडिया में लगी हुई है, तो वो कंटिन्यूसली हम भी बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी या प्रीमियम प्रोडक्ट्स लग्जरी मशीन बढ़ते हैं तो उसके लिए टिंटिंग मशीन मैंडेटरी है डीलर के लिए। तो हमें लगता है कि प्लांट में तो सिर्फ हम मुश्किल से जो बड़े फास्ट कलर होते हैं, फास्ट रनिंग कलर्स होते हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड कलर है, या ब्लू कलर है, या येलो कलर है, जो ज्यादा चलते हैं, ग्रीन कलर, तो वही बनते हैं। बाकी जो शेड्स हैं, पेस्टल शेड्स हैं, वो सब टिंटिंग मशीन से बनते हैं। तो टिंटिंग मशीन पे भी हमारा प्रोग्राम है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है, नए डीलर ओपन कर रहे हैं, तो टिंटिंग मशीन भी नई इंस्टॉल करेंगे आने वाले टाइम में।
ओके ओके सर, एंड जस्ट लास्टली इफ यू कुड हाईलाइट एनी न्यू प्रोडक्ट दैट वर लॉन्च्ड इन द लास्ट 6 मंथ्स।
देखिए, पेंट में R&D कंटिन्यूसली होती है, और R&D का मतलब यह है कि हम एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर कैसे पेंट की अच्छी से अच्छी क्वालिटी, और किसी भी इंटरनेशनल लेवल का कोई भी पेंट होता है तो उसके एटपार क्वालिटी ही मार्केट में एक्सेप्टेड होती है, अदरवाइज नहीं होती है, अदरवाइज आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो इसमें जो अभी हमने लास्ट ईयर एक पेंट डेवलप किया था कैमोड्यूल, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए कॉमन पेंट है, कि जैसे हर बार क्या होता है, जब हम पेंट कराते हैं इंटीरियर में कराते हैं, एक्सटीरियर में कराते हैं, हर बार कुछ ना कुछ पेंट खराब हो जाता है, बच जाता है। तो हमने एक यूनिक प्रोडक्ट डेवलप किया इस बार कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में सेम पेंट काम करेगा और आपकी वेस्टेज उसमें जीरो रहेगी। और इसके अलावा हमने अपने यहाँ पहले हम लोग जो कलरेंट्स टिंटिंग मशीन के वो हम आउटसोर्स करते थे, इंपोर्ट करते थे, या कुछ बाहर से मटेरियल परचेज करते थे, वो भी हमने इन हाउस पूरे डेवलप किए हैं। और जो मैंने आपसे कलर इसकी बात की है, स्टेनर भी पहले कभी हम बाहर से परचेज किया करते थे, ये पूरा टेक्नोलॉजी हमने इन हाउस डेवलप करके और कॉस्ट इसकी रिड्यूस करा के इन हाउस प्रोडक्शन की है, जो पहले कभी हम 10-12 केएल महीने में स्टेनर बनाया करते थे, वो भी हम 150 केएल बनाने लगे, और अभी आने वाले टाइम में इसको 250-300 केएल ऑलमोस्ट डबल कर देंगे। मशीनें और लग रही हैं, जितनी एग्जिस्टिंग मशीन है फुल लोड कैपेसिटी पे चल रही हैं, और डिमांड हमारे पास है, तो आई थिंक होपफुली हम लोग इसको अच्छे से ग्रो करेंगे।
थैंक यू।
Thank you. The next question is from the line of Amit Shah from A Securities. Please go ahead.
Hello.
Hello.
Hi, sir.
Hi.
I have a couple of questions, sir. Sir, the company, we have achieved a royalty income of 22 crores in Q1 FY22. So what is the kind of growth that we are expecting in this royalty income? Considering the current pandemic situation going on.
देखिए, इस साल में तो हम 95 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, करेंट ईयर में पैंडेमिक के बावजूद भी 96 करोड़ का टारगेट हम लोग इस साल में लेके चल रहे हैं, और आने वाले 2-3 साल में ये रॉयल्टी जो है हम लोग
25 लाख टन
का, और सेल्स जो है वो हमारी 25 लाख टन की सेल हो जाएगी इस साल में, और जो आने वाले 2-3 साल में बहुत अग्रेसिवली हम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और जो आप समझ लीजिएगा कि अभी हम 23-24 के लिए करीब रॉयल्टी 150 करोड़ और 25-26 में प्लस 200 करोड़ की रॉयल्टी का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और वहाँ पे उस समय पे जो हमारी सेल्स होंगी वो ऑलमोस्ट 30-40% प्लस हो जाएंगी।
ओके सर। सर एंड कैन यू थ्रो सम लाइट इन एनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन स्टील सेगमेंट इन दिस क्वार्टर?
देखिए, स्टील में हमने 3 साल पहले नेक्स्ट लॉन्च किया था, उसके बाद एक अलॉय स्टील का प्रोडक्ट हमने पावर अलॉय स्टील 10,000 के नाम से एक नया प्रोडक्ट दिया था, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए। नेक्स्ट हमने पहले शुरू किया था वो अभी 500 प्रूफ स्ट्रेस के साथ शुरू किया था, अभी हम 550 स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, जिससे कि सेविंग है कंस्ट्रक्शन में और सेफ्टी मेजर उसमें जो है बेटर है। तो अभी वो प्रोडक्ट भी हमने अपग्रेड करके पूरे इंडिया में कामधेनु नेक्स्ट जो है 550 ग्रेड अवेलेबल करा दिया है। और बाकी और R&D का काम बहुत कंटिन्यूसली चलता रहता है, अभी इट इज़ टू अर्ली, जब तक कोई प्रोडक्ट सामने ना आ जाए उसके बारे में कुछ भी अभी आज डिस्क्लोज करना सब पॉसिबल नहीं है।
ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, इन आवर प्रेजेंटेशन द कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन रियलाइंड फ्रॉम 1,56,000 metric tons to 120,000 metric tons. So, sir, any reason behind that?
ये सर एक temporary phase है, एक तो COVID का भी इसमें effect है, और हमारे को mainly जो हमने इसमें क्या था कि total production पे focus ना करके हमने बहुत सारा R&D के लिए बहुत सारा time waste होता है daily। जो भी नए प्रोडक्ट हम इनोवेट करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, तो उस पर काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। दूसरा, जितनी हमारी फ्रेंचाइजी यूनिट्स में हमारे क्वालिटी इंजीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हम कोई ना कोई प्रोग्राम टाइमिंग वहाँ पे उसको अलॉट करते हैं प्लांट के अंदर, तो वो टीम पूरी की पूरी आती है, फिर एक हफ्ता रुक के और पूरा ट्रेनिंग सेशन चलता है, उनको प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है, कॉस्टिंग उनको दिखानी होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि अभी हम पूरा 100% फोकस सिर्फ अपनी प्रोडक्शन पर ना करके, क्योंकि हमारा जो फ्रेंचाइजी रूट है ये ही सबसे इम्पोर्टेंट एज ए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है, जो हमारा फोकस एरिया है। तो हमारा फोकस एरिया है कि हम अपने प्लांट को एज R&D सेंटर प्लस एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ऑल फ्रेंचाइजी, क्योंकि फ्रेंचाइजी बढ़ाना बहुत इजी है। जैसे जैसे ब्रांड का लीवरेज बढ़ रहा है, ब्रांड की क्वांटिटी बढ़ रही है, ब्रांड की परसेप्शन बढ़ रही है, तो वहां से पैसा अर्न करना इजी है, बशर्ते कि अगर हम अपने प्लांट को बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व करें। तो दैट वे हमारा फोकस फ्रेंचाइजी रूट से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करना, ट्रिपल करना, और वहां से एज ए रॉयल्टी हम अपनी इनकम को जनरेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उससे लीवरेज हमारे को ज्यादा मिल रहा है। और बाकी जैसे अगर ये मान लीजिएगा थोड़ा सा बाजार में और इम्प्रूवमेंट आएगा और हमारा ये पीरियड ओवर हो जाएगा, तो वापस हम वो कैपेसिटी हमारे पास है, सिर्फ हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, उसको कैपेसिटी ऑलरेडी हमारे पास है। हेलो,
यस सर, ओके,
आपको आवाज आ रही थी?
यस यस सर, थैंक यू सर,
ओके, थैंक यू,
थैंक यू। Ladies and gentlemen, this was the last question for today. I would now like to hand over the conference to the management for their closing comments. Over to you, sir.
I take this opportunity to thank you everyone for joining on the call. I hope we have been able to address your all queries. For any further information or clarification, kindly get in touch with me or SGA, our investor relation. Thank you once again.
Thank you very much, members of the management, ladies and gentlemen.